श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 10 भक्त शिरोमणि प्रहलाद। नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह देव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्काए और इस तरह बोले। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ। अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। हे मेरे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है, वह निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहें। हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, समृद्धि तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है, तो वह आपके ही समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। हे षड ऐश्वर्यवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मन्वंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान उच्च लोकों तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को लौट सकोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, क्योंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि ढालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोच कर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, किसी भी प्रकार से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे, वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो और अन्य लोगों को तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा अच्छा भक्त बन सके। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो, तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञानुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पदारूढ़ किया गया। अन्य देवताओं से गिरे हुए ब्रह्मा जी का मुख मंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह अभी बालक है किंतु है महाभागवत। अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे क्रूर तथा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर प्रदान मत करना। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा, शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज द्वारा बलि भांति पूजित होकर ब्रह्मादि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए اور پھر اپنے اپنے داموں کو واپس چلے گئے۔ اس پرکار بھگوان وشنو کے دونوں پارشد جو دیتی کے پتر ہرنیاکش تتھا ہرنیاکشپو بنے تھے مار ڈالے گئے۔ برہم وش انہوں نے سوچا تھا کہ ہر ایک کے ہردے میں نواس کرنے والے پرمیشور ان کے شترو ہیں۔ برہمنوں دوارا شاپت ہونے سے ان دونوں پارشدوں نے کمبھ کرن تتھا دشانن راون کے روپ میں پھر سے جنم لیا۔ یہ دونوں راکشس بھگوان رام چندر کے اتلت پراکرم دوارا مارے گئے۔ بھگوان رام چندر کے باڑوں سے بند کر کمبھ کرن تتھا راون دونوں ہی یدھ بھومی میں پڑے رہے اور بھگوان کے وچار میں لین ہو کر اسی طرح اپنے اپنے شریر چھوڑ دیے جس طرح اپنے پورو جنم میں ہرنیاکش تتھا ہرنیاکشپو کے روپ میں کیا تھا۔ انہوں نے پھر سے مانو سماج میں ششوپال تتھا دنت وکر کے روپ میں جنم لیا اور بھگوان سے ویسا ہی ویر بھاو بنائے رکھا۔ یہ وہی تھے جو تمہارے سمکش بھگوان کے شریر میں لین ہو گئے۔ نہ کیول ششوپال تتھا دنت وکر اپیتو انیا انیکا انیک راجا جو کرشن کے شترو بنے ہوئے تھے اپنی مرتیو کے سمے موکش کو پراپت ہوئے۔ چونکہ وہ بھگوان کے وشے میں سوچتے تھے اتہ انہیں بھگوان جیسا آدھیاتمک سوروپ پراپت ہوا جس طرح برنگی دوارا پکڑا گیا کیڑا برنگی کا شریر پراپت کر لیتا ہے۔ شدھ بخت جو بھکتی کے دوارا پورن پرشوتم بھگوان کا نرنتر چنتن کرتے رہتے ہیں وہ انہی جیسا شریر پراپت کرتے ہیں۔ یہ ساروپیا مکتی کہلاتی ہے۔ یدیپی ششوپال دنت وکر تتھا انیا راجا کرشن کا اپنے شترو کے روپ میں چنتن کرتے تھے کنتو انہیں بھی ویسا ہی فل پراپت ہوا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس طرح ششوپال تتھا انیوں نے بھگوان کا شترو ہوتے ہوئے بھی موکش پراپت کیا، تو یہ سب کچھ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے۔ پورن پرشوتم بھگوان کرشن سمبندی اس کتھا میں بھگوان کے وبھن اوتاروں کا ورنن کیا گیا ہے، ساتھ ہی اس میں ہرنیاکش تتھا ہرنیاکشپو نامک دو اسوروں کے ود کا بھی ورنن کیا گیا ہے۔ یہ کتھا مہا بھاگوت پرہلاد مہاراج کے گنوں، ان کی درڑ بھکتی، ان کے پریپورن گیان تتھا بھوتک کلمش سے پورن ویرکتی کا بخان کرتی ہے۔ یہ سریجن پالن تتھا سنہار کے کارن سوروپ پورن پرشوتم بھگوان کا بھی ورنن کرتی ہے۔ پرہلاد مہاراج نے اپنی ستوتیوں میں بھگوان کے دیویہ گنوں کے ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ کس طرح دیوتاؤں تتھا اسوروں کے آواز بھگوان کے نردیش ماتر سے دوست ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بوتک ایشوریہ میں کتنے ہی بڑے پورے کیوں نہ ہوں۔ دھرم کے جن سدھانتوں سے پورن پرشوتم بھگوان کو واسطو میں سمجھا جا سکتا ہے وہ بھاگوت دھرم کہلاتا ہے۔ اتے اس کتھا میں ان سدھانتوں کا سماویش ہونے سے واسوک ادھیاتم کا بلی باتی ورنن ہوا ہے۔ جو کوئی پورن پرشوتم بھگوان وشنو کی سرو ویاپکتا وشیک اس کتھا کو سنتا ہے اور اس کا کیرتن کرتا ہے وہ نشچت روپ سے بھو بندھن سے مکت ہو جاتا ہے۔ پرہلاد مہاراج بھکتوں میں سرو شریشت تھے۔ जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों हिरण्यकशिपु के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह देव की लीलाओं से संबंध इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहां कोई चिंता नहीं रहती है। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण ही है क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्सव हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा किरंतन सुहृद हैं और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठतः संबंधित हैं। दरअसल वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा सदृश हैं। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हो जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं जो मौन ध्यान भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, बहुत समय पहले तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल मय नामक दानव ने शिव जी की ख्याति को धूमिल कर दिया। उस स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने शिव जी की रक्षा की थी। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मैं दानव ने किस कारण से शिव जी की कीर्ति नष्ट की, कृष्ण ने किस तरह शिव जी की रक्षा की और किस तरह उनकी कीर्ति का पुनः विस्तार किया, कृपया इन घटनाओं को कह सुनाएं। नारद मुनि ने कहा, जब देवताओं ने जो भगवान कृष्ण की दया से सदा शक्तिशाली बने रहते हैं असुरों से युद्ध किया तो असुर हार गए, अतएव उन्होंने महानतम असुर मय दानव की शरण ग्रहण की। असुरों के महानायक मय दानव ने तीन अदृश्य आवास तैयार किए और उन्हें असुरों को सौंप दिया। ये तीनों आवास सोने चांदी तथा लोहे के बने विमानों जैसे थे और उनमें अपूर्व साज सामग्री थी। हे राजा युधिष्ठिर, इन तीनों आवासों के कारण असुरों के सेना नायक देवताओं से अदृश्य हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का स्मरण करते हुए असुरगण तीनों लोकों ऊर्ध्व मध्य तथा अधोलोकों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात जब असुरगण उच्च लोकों को तहस नहस करने लगे तो उन लोकों के शासक शिवजी की शरण में आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तीन लोकों के वासी देवता भी नष्ट होने वाले हैं, हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिवजी ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों द्वारा निवसित तीनों आवासों की ओर छूड़ा। शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य मंडल से निकलने वाली प्रज्वलित किरणों जैसे लग रहे थे। उनसे तीनों आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, जिससे वे दिखने बंद हो गए। शिवजी के सुनहरे बाणों से प्रहार किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। तब परम योगी मय धानव ने उन्हें स्वयं द्वारा निर्मित अमृत कूप में लाकर डाल दिया। असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही वज्र के समान अभेद्य हो गए। अतीव बल प्राप्त कर लेने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की भांति उठ खड़े हो गए। शिवजी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मैं दानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को किस प्रकार रोका जाए। तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और दोपहर के समय आवासों में प्रवेश करके वे कुएं का सारा अमृत पी गए। असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं और वह यह भी समझ गया कि यह अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। मय धानव ने कहा, जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता, चाहे वह देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई क्यों न हो। नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल तथा बाण से लैस कर दिया। इस तरह से सुसज्जित लैस होकर शिवजी ने अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ पर आसीन हुए। हे राजा युधिष्ठिर, परम शक्तिशाली शिवजी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और दोपहर के समय असुरों के तीनों आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन उच्च लोकों के निवासियों ने धुनधुबियां बजाई। देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं परम प्रमुदित होकर नाचने गाने लगी। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिवजी अपने धाम लौट गए। यद्यपि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, भला मैं उससे और अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के अंतर्गत भक्त शिरोमणि प्रहलाद नामक दसवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।